मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु येसु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि महिलाओं की गरिमा और अपार मूल्य को हर संस्कृति में मान्यता दी जाए तथा विश्व के विभिन्न हिस्सों में उनके साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त किया जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है बुधवार आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पाप फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। बुधवार आम दर्शन समारोह में संत पाप फ्रांसिस ने संत पेत्रस महागिरजाघर के प्रांगण में एकत्रित सभी विश्वासियों एवं तीर्थयात्रियों के सामने चार प्रमुख सद्गुणों पर अपनी धर्म शिक्षा माला जारी रखते हुए आत्म संयम के सद्गुण पर चिंतन किया। संत पाप फ्रांसिस ने सभी का अभिवादन करते हुए कहा,
cari fratelli e sorelle, buongiorno.
प्यारे भाइयों एवं बहनों सुप्रभात।
Oggi parlerò della quarta e ultima virtù cardinale, la temperanza.
आज मैं चौथे और अंतिम प्रमुख सद्गुण आत्मसंयम के बारे बात करूंगा। अन्य तीन सद्गुणों के साथ यह सद्गुण एक इतिहास साझा करता है जो बहुत पुराना है और केवल ख्रिस्तियों से संबंधित नहीं है। यूनानियों के लिए सद्गुणों के अभ्यास का उद्देश्य था खुशी। दार्शनिक अरिस्तो ने नैतिकता पर अपना सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ अपने बेटे निकोमाचस को संबोधित करते हुए लिखा है ताकि उसे जीवन जीने की कला सिखाई जा सके।
Perché tutti cerchiamo la felicità, eppure così pochi la raggiungono.
क्या कारण है कि हम सभी खुशी की तलाश करते फिर भी बहुत कम लोग इसे हासिल कर पाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अरिस्तो सद्गुणों के विषय को संबोधित करते हैं जिसमें इनक्रेटिया यानी आत्म संयम का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस ग्रीक शब्द का शाब्दिक अर्थ है स्वयं पर अधिकार। इस प्रकार आत्म संयम अपने आप में एक शक्ति है, इसलिए यह सद्गुण आत्म नियंत्रण की क्षमता है, विद्रोही जुनून से अभिभूत न होने की कला जिससे मनजोनी मन और हृदय की गड़बड़ी कहते हैं उसे व्यवस्थित करने की कला है। संत पापा ने कहा, कैथोलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा हमें बतलाती है कि आत्म संयम वह नैतिक सद्गुण है जो सुखों के आकर्षण को नियंत्रित करता है और निर्मित वस्तुओं के उपभोग में संतुलन क्षमता बनाता है। कलीसिया की धर्म शिक्षा आगे बतलाती है कि वह प्रवृत्ति पर इच्छा का प्रभुत्व सुनिश्चित करता और इच्छाओं को ईमानदारी की सीमा के भीतर रखता है। आत्म संयमी व्यक्ति अपनी संवेदनशील भूख को अच्छाई की ओर निर्देशित करता है और स्वस्थ विवेकाधिकार बनाए रखता है एवं क्षुद्र इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता बल्कि भूख को नियंत्रित करता है। इसलिए आत्म संयम जैसा कि ताले शब्द कहता है सही माप का सद्गुण है। यह हर स्थिति में समझदारी से व्यवहार करता है क्योंकि जो लोग हमेशा जोश या अति उत्साह में कार्य करते हैं वे अंततः अविश्वसनीय होते हैं। संत पापा ने जोर देकर कहा, बिना संयम वाले लोग हमेशा अविश्वसनीय होते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां बहुत सारे लोग उन बातों को कह देने में गर्व महसूस करते जो वे सोचते हैं, वहीं आत्म संयमी व्यक्ति सोचकर बोलना पसंद करते हैं। संत पापा ने कहा, क्या आप अंतर समझते हैं? मन में जो आता है उसे बोल देना जी नहीं, जो कहना है उसे सोचकर कहना चाहिए। आत्म संयमी व्यक्ति व्यर्थ वादे नहीं करता बल्कि उतना ही वादा करता है जितना वह पूरा कर सकता है। सुखों के साथ भी आत्म संयमी व्यक्ति विवेकपूर्ण कार्य करता है। आवेगों का मुक्त प्रवाह और सुख चैन को दी गई पूरी स्वच्छंदता अंततः हमारे ही विरुद्ध हो जाते हैं और हमें निरस्ता की स्थिति में ढकेल देते हैं। कितने लोग जो हर चीज को बड़े चाव से अजमाना चाहते थे उन्होंने पाया कि हर चीज का स्वाद खो गया है। इससे अच्छा है कि सही माप की तलाश की जाए। आत्मसंयमी व्यक्ति शब्दों को अच्छी तरह तौलना और मापना जानता है। वह जो बोलता उसे सोचकर बोलता है। वह रिश्तों और दोस्ती को बर्बाद करने की अनुमति क्रोध को बिल्कुल नहीं देता, जिससे केवल कठिनाई से ही दोबारा बनाया जा सकता है। विशेष रूप से पारिवारिक जीवन में जहां अवरुद्ध कम हो जाते हैं, हम सभी तनाव, चिड़चिड़ापन और क्रोध को नियंत्रण में न रख पाने का जोखिम उठाते हैं। बोलने का एक समय होता है और चुप रहने का भी समय होता है, लेकिन दोनों के लिए सही माप की आवश्यकता है और यह कई चीजों पर लागू होता है। उदाहरण के लिए दूसरों के साथ रहना और अकेले रहना। संत पापा ने आगे कहा कि यदि संयमी व्यक्ति अपने चिड़चिड़ेपन को नियंत्रित करना जानता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम उसे हमेशा शांतिपूर्ण और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ देखेंगे। दरअसल कभी कभी गुस्सा होना भी जरूरी है, लेकिन हमेशा सही तरीके से। गुस्से का एक शब्द कभी कभी तीखी और नाराजगी भरी चुप्पी से ज्यादा स्वस्थप्रद होता है। संयमी व्यक्ति जानता है कि दूसरे को सुधारने से अधिक असुविधाजनक कुछ भी नहीं है, लेकिन वह यह भी जानता है कि यह आवश्यक है, अन्यथा वह बुराई को खुली छूट दे देगा। कुछ मामलों में संयमी व्यक्ति चरम सीमाओं को एक साथ रखने का प्रबंधन करता है। वह पूर्ण सिद्धांतों की पुष्टि करता है, गैर पारक्रम्य मूल्यों का दावा करता है, लेकिन वह यह भी जानता है कि लोगों को कैसे समझना है और उनके लिए सहानुभूति प्रदर्शित करना है। वह सहानुभूति प्रदर्शित करता है, इसलिए आत्मसंयमी व्यक्ति संतुलित होता है। यह एक दुर्लभ सद्गुण है। दरअसल हमारी दुनिया की हर चीज हमें गति की ओर ढकेलती है। इसके बजाय आत्मसंयम छोटापन, विवेकशीलता, छिपाव, नम्रता आदि जैसे सुसमाचारी मनोभाव को मिलाता है। संयमी व्यक्ति दूसरों के सम्मान की सराहना करता, लेकिन इससे हर कार्य और हर शब्द के लिए एकमात्र मापदंड नहीं बनाता है। वह संवेदनशील होता, रोना जानता और इसमें उसे शर्म नहीं आती, लेकिन वह अपने लिए खेद महसूस नहीं करता। हार के बाद वह फिर उठ खड़ा होता है। विजयी होने पर वह अपने पहले के सामान्य जीवन में लौट सकता है। वह प्रशंसा नहीं चाहता, लेकिन वह जानता है कि उसे दूसरों की जरूरत है। संत पापा ने कहा, भाइयों एवं बहनों, यह सच नहीं है कि संयम आपको उदास और आनंदहीन बना देता है। जी नहीं, इसके विपरीत यह हमें जीवन के लाभों का बेहतर आनंद लेने देता है। मेज पर एक साथ रहना, मित्रता की कोमलता, बुद्धिमान लोगों में विश्वास, सृष्टि की सुंदरता पर आश्चर्य, आत्मसंयम के साथ खुशी वह खुशी है जो उन लोगों के दिलों में पनपती है जो जीवन में सबसे अधिक मायने रखने वाली चीजों को पहचानते और महत्व देते हैं। तब संत पापा ने कहा, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि वे हमें आत्मसंयम का वरदान दें। परिपक्वता का वरदान, उम्र की परिपक्वता, भावनात्मक परिपक्वता और सामाजिक परिपक्वता। इतना कहने के बाद संत पापा ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की। धर्म शिक्षा के उपरांत संत पापा ने आम दर्शन समारोह में भाग लेने वाले विभिन्न भाषा भाषी के तीर्थयात्रियों एवं आगंतुकों का अभिवादन किया। विशेषकर इंग्लैंड, आयरलैंड, फिनलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, कोरिया और अमेरिका के दलों का स्वागत किया और उनके तथा उनके परिवारों के लिए पुनर्जीवित ख्रिस्त के आनंद और ईश्वर की आशीष की कामना की। तत्पश्चात उन्होंने युवाओं, बीमारों, बुजुर्गों और नवविवाहितों की याद की। सभी को पास्का की शुभकामनाएं देते हुए उनके लिए कामना की कि पास्का की सांत्वना भरी रोशनी सभी के दिल में बढ़े जो क्रूसित और पुनर्जीवित यीशु में हमारे विश्वास एवं आशा को सुदृढ़ करते। और अंत में संत पापा ने सभी के साथ हे हमारे पिता प्रार्थना का पाठ किया और उन्हें अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
स्वर्ग छोड़ के धरती पे आया, राजा होकर प्रजा बना,
स्वर्ग छोड़ के धरती पे आया, राजा होकर प्रजा बना, मेरे गुनाहों की माफी देने, मेरे गुनाहों की माफी देने, आया तू आया तू आया, पर मैंने न तुझको पहचाना, पर मैंने न तुझको पहचाना, क्षमा करो सजा देने आया, पापियों का अंत करने आया,
पापियों का अंत करने आया,
मुझको तू जीवन देने आया, आया तू आया तू आया, पर मैंने न तुझको पहचाना, पर मैंने न तुझको पहचाना, क्षमा करो क्षमा करो।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अंत में संघर्ष ग्रस्त देशों में युद्ध बंदियों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। संत पापा ने कहा, हमारे विचार इस समय युद्धरत देशों के पास जाते हैं। हम पवित्र भूमि फिलिस्तीन इसराइल के बारे में सोचते हैं। हम यूक्रेन पीड़ित यूक्रेन के बारे में सोचते हैं। हम युद्ध बंदियों के बारे में सोचते हैं और उनकी मुक्ति के लिए अपील करते हुए संत पापा ने कहा, प्रभु की इच्छा हो कि वे सभी मुक्त हो जाएं। अपनी अपील के अंत में संत पापा ने उन कैदियों के लिए विशेष विचार रखे जिन्हें यातना दी जाती है। कैदियों पर अत्याचार एक भयानक बात है, यह मानवीय नहीं है। उन्होंने कहा, हम कई प्रकार की यातनाओं के बारे में सोचते हैं जो व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचाती है, और इतने सारे प्रताड़ित लोगों की, प्रभु सभी को मदद करें और सभी को आशीर्वाद दें। और संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवारीय आमदर्शन समारोह के दौरान संयम गुण पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस गुण को अपने में विकसित करने के लिए कहा। संयम अर्थात खुद पर अधिकार रखने की हमारी क्षमता हमें व्यर्थ के कार्यों और झगड़ों से बचाती है और हम समाज में शांतिमय जीवन का आनंद लेते हैं। इसी के मद्देनजर संत पापा ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हम अपने में संयम का गुण विकसित करना सीखें। अपने शब्दों और कार्यों पर नियंत्रण रखकर हम व्यर्थ के झगड़ों से बच सकते हैं और अपने समाज में शांति को बढ़ावा दे सकते हैं। # आम दर्शन समारोह। और संत पापा फ्रांसिस ने कोलंबियाई राजधानी के वर्तमान धर्माध्यक्ष कार्डिनल लुइस जोस रुएडा को स्पैनिश में भेजे गए एक टेलीग्राम में बोगोटा के सेवानिवृत्त महाधर्माध्यक्ष दिवंगत कार्डिनल पेत्रो रुबियानो सेंस के प्रति शोक व्यक्त किया, जिनका 15 अप्रैल को 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। संत पापा ने दिवंगत कार्डिनल के निधन पर दुख व्यक्त किया, साथ ही उन्होंने स्थानीय कलीसिया के सभी सदस्यों, उनके परिवार और अंतिम संस्कार में भाग लेने वालों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की। संत पापा ने आश्वस्त किया, मैं इस आत्म बलिदान करने वाले पुरोहित की शाश्वत शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ, जिन्होंने कलीसिया की भलाई के लिए अपना संपूर्ण जीवन दे दिया है। मैं उनकी आत्मा को मामरिया की मध्यस्थता में सौंपता हूँ। उधर 15 और 16 अप्रैल को वाटिकन के कासा सांता मार्ता में C9 की सत्र के दौरान दुनिया के विभिन्न हिस्सों, विशेष रूप से मध्य पूर्व और यूक्रेन में संघर्ष के संदर्भ में प्रार्थनाएं की गई।
वाटिकन के कासा सांता मार्था में C9 अर्थात 9 कार्डिनलों के परिषद की बैठक 15 अप्रैल को शुरू हुई। इस दिन कार्डिनलों ने संत पापा की उपस्थिति में कलीसिया में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा की और मिशनरीज ऑफ द इमाकुलेट धर्म समाज की सिस्टर रेजिना दा कोस्टा पेड्रो के विचारों को सुना, जिन्होंने कुछ ब्राजीलियाई महिलाओं की ठोस कहानियां और विचार सामने लाए। पोंटिफिकल ग्रेगोरियन विश्वविद्यालय के धर्मशास्त्र संकाय की प्रोफेसर स्टेला मोरा ने संस्कृतियों द्वारा ग्रह पर विभिन्न स्थानों में महिलाओं की भूमिका को पहचानने के तरीके के बारे में बातें की। 16 अप्रैल को बैठक धर्म सभा पर कार्डिनल मारियो ग्रेच और मोनसिनियोर पियरो की एक रिपोर्ट के साथ कार्य शुरू हुआ और धर्म प्रांतों में अपोस्टोलिक संविधान प्रेडिकाते एवांजेलुम के कार्यान्वयन पर एक चिंतन के बाद विभिन्न क्षेत्रों की सामाजिक, राजनीतिक और कलीसिया संबंधी स्थिति पर प्रत्येक कार्डिनल की रिपोर्ट के साथ बैठक समाप्त हुआ। सत्र के दौरान दुनिया में विभिन्न हिस्सों में, विशेष रूप से मध्य पूर्व और यूक्रेन में युद्ध और संघर्ष परिदृश्यों के संदर्भ और कई अवसरों पर प्रार्थनाएं समर्पित थीं। परिषद के सदस्यों और संत पापा ने जो कुछ हो रहा है उसके बारे में चिंता व्यक्त की और आशा व्यक्त की कि बातचीत और शांति के रास्तों की पहचान करने के प्रयासों को बढ़ाया जाएगा। कार्डिनल परिषद जून में फिर से बैठक करेगी। उधर देश उस गतिरोध से बाहर निकलने के रास्ते तलाश रहा है जिसके कारण यूक्रेनी सेना कई हफ्तों से रूसी अग्रिम मोर्चे से पीछे हट रही है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने चीन से बातचीत शुरू करने में मदद करने का आग्रह किया। उत्तरी यूक्रेन और डोनबास में रूसी अभियान बंद नहीं हो रहे हैं। आज सुबह देश के उत्तर में यूक्रेनी शहर चेर्निहाइव पर मॉस्को हमले में मरने वाले नागरिकों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है और 18 घायल हो गए हैं। मेयर अलेक्जेंडर लोमाको ने बताया कि यह एक अस्थायी टोल है और मौतों की संख्या बढ़ने की आशंका है। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में रूसी सेना ने उत्तर पूर्वी यूक्रेन के सुमी क्षेत्र में 35 हमले किए, जहां कीव मीडिया रिपोर्टों के अनुसार 200 से अधिक विस्फोट दर्ज किए गए थे। इस बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सैन्य सहायता प्रदान करने का आग्रह करते हैं और इसके अलावा चीन से उस संघर्ष को समाप्त करने के राजनयिक प्रयास में नायक बनने का आह्वान करते हैं, जो अब 2 साल से अधिक समय से चल रहा है। जर्मन चांसलर स्कोल्स और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बैठक के बाद जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर लिखा, बीजिंग वास्तव में यूक्रेन में शांति और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता की बहाली में योगदान दे सकता है। वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन जो जून में स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाएगा सकारात्मक परिणाम देगा। अपनी ओर से चीन का मानना है कि शांति सम्मेलन आयोजित करने से पहले अभी भी बहुत काम करना बाकी है। उधर मिसियो ऑस्ट्रिया के क्रिस्टोफ का कहना है कि विकसित देशों में उपभोक्ताओं की जागरूकता और व्यवहार बाल दासता और श्रम के संकट से लड़ने का पहला कदम है, जो दुनिया भर के लाखों बच्चों को प्रभावित करता है। बाल दासता के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर वाटिकन न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में क्रिस्टोफ ने बच्चों को बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराने के लिए कलीसियाई संगठनों द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बातें की। 16 अप्रैल क्रिस्तीय सांस्कृतिक आंदोलन MCC द्वारा प्रचारित बाल दास्ता के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। यह एक स्पैनिश आधारित कैथोलिक संगठन है जो सामाजिक न्याय और मानवाधिकार दिलाने के कार्य में लगा हुआ है। इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।